नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते चोपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखीनां क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। जदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। जदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। जदृच्छया आपने आप च भी उपपन्नम् प्राप्त हुए स्वर्ग स्वर्गलोक का द्वारम दरवाजा अपावृतम खुला हुआ सुखिनः अत्यंत सुखी क्षत्रिया राज परिवार के सदस्य पार्थ हे पिता पुत्र लभन्ते प्राप्त करते हैं युद्धम युद्ध को ईदृशम इस तरह। तो ये श्लोक का अर्थ क्या हुआ? हे पार्थ वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसी युद्ध की अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गदार के स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। जदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्ग द्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण कह रहे हैं। और कृष्ण कौन है? कृष्ण भगवान। भगवान किसको कह रहे हैं? अर्जुन को। अर्जुन क्षत्रिय था, राजवंश में उनका जन्म हुआ था, कुरु वंश में। वैसे क्षत्रिय का दो लाइन होता है, एक है सूर्य वंश और एक है चंद्र वंश। सूर्य वंश सूर्य से सूर्य देव से आता है। सूर्य लोक का जो सूर्य मंडल है, सूर्य मंडल का अधिपति है विवश्वान, और विवश्वान के पुत्र था मनु, वैवश्यत मनु। विवश्वान के पुत्र है वैवश्यत मनु। मनु से मनु का पुत्र इक्ष्वाकु। ऐसे सूर्य वंश में रामचंद्र आए थे। उस वंश में था जजाति पुरु, वैसे अजय दशरथ, दशरथ के पुत्र था श्री रामचंद्र। भगवान श्री रामचंद्र इस वंश में दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण किए थे। और दूसरा जो वंश है वो है चंद्रवंश। इस चंद्रवंश में श्री कृष्ण भगवान आए थे, अर्जुन भी वही वंश के ही थे, सूर्य वंश और चंद्र वंश। एक क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? क्षत्रिय का कर्तव्य है धर्म युद्ध, धर्म को रक्षा करने के लिए युद्ध करना। धर्म के रक्षक हैं क्षत्रिय, धर्म का पालक हैं ब्राह्मण। धर्म का पालन करते हैं, पालन पोषण करते हैं ब्राह्मण, और उस धर्म को रक्षा करते हैं ब्राह्मणों के लिए, धर्म को रक्षा करते हैं क्षत्रिय। उसके कारण ये दो वर्ण जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दो वर्ण ब्राह्मण और क्षत्रिय बहुत ही जरूरी है। ब्राह्मण ने पालन करते हैं, क्षत्रिय को रक्षा करते हैं। और जब ऐसे क्षत्रिय नहीं रहता है तब धर्म का नाश होता है। जब ज्यादा ज्यादा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, धर्म का ग्लानि होने से क्या होता है? अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का अभ्युत्थान होता है, मतलब अधर्म का प्रसार होता है। और उसके कारण ये पृथ्वी का हाल बहुत ही खराब हो जाता है, बहुत ही खतरनाक होता है। तो इसी परिस्थिति में जब ये धर्म जो जब बहुत ऐसे बुरा हाल में रहता है, धर्म का ग्लानि होता है, धर्म का नाश विनाश होता है, तब भगवान स्वयं धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं। धर्म बर्मणि भगवान का और एक नाम है, धर्म बर्मणि। वर्म क्या है? वर्म जो सैनिकों ने लड़ाई करते समय पढ़ते हैं, पहनते हैं वर्म कवच। तो कवच से क्या होता है? रक्षा होता है। तो वैसे भगवान धर्म को रक्षा करते हैं, उसके लिए भगवान का और एक नाम है धर्म वर्ण, धर्म वर्ण। तो जब धर्म का हाल बहुत ही खराब हो जाता है तब भगवान स्वयं आते हैं, नहीं तो धर्म की रक्षा करने वाले होते हैं क्षत्रिय। और वैसे क्षत्रिय जब नहीं रहता है तब धर्म का हाल बहुत ही खराब हो जाता है। जैसे उस समय हुआ था, भगवान श्री कृष्ण जब आए थे आज से लगभग 5000 साल पहले, जब द्वापर युग खत्म होने वाला था और कली युग शुरू होने वाला था, उस समय भगवान आए थे। उस समय का परिस्थिति बहुत ही खराब हो गया था। कंस और उनके सारे साथिया जो राक्षस था असुर, ये पृथ्वी को कब्जा कर लिया था। और अधर्म, उसके कारण अधर्म का बहुत ही विस्तार हो चुका था। उस समय भगवान आए थे, आकर कंस का जितने सारे अनुचर था उनको हत्या की, कृष्ण और बलराम ने, और बाद में कंस को भी संधान किया। और इस उसके बाद फिर भी हालत पृथ्वी का हालत बहुत ही खराब हो गया था, क्योंकि कुरुवंश का जो उस समय पृथ्वी पर राज्य विस्तार कर चुका था, वो कुरुवंश का दुर्योधन, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन जो है कली का अवतार, दुर्योधन है कली के, कली का कली द्वापर युग में दुर्योधन के रूप में आया था। और धर्म का पुत्र कौन था? युधिष्ठिर। कली है अधर्म बंधु और युधिष्ठिर महाराज है धर्मराज के पुत्र। तो इन दोनों में तो संघर्ष होगा ही, वो हुआ था। दुर्योधन का पक्ष कौरव और युधिष्ठिर महाराज और उनके चार भाई, ये दो पक्ष बने, कौरव और पांडव। अब कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में ये दो पक्ष का बीच युद्ध शुरू होने वाला था। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवहा का मतलब युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं, युद्ध करने के लिए तैयार हो गए जो व्यक्ति समवेता वहां पर इकट्ठे हुए थे लड़ाई करने। तब अपने विपक्ष में अपने बहुत सारे निकट के आदमी को, मतलब अपने आत्मीय जो अपने रिश्तेदार, अपने सखा, अपने गुरु, अपने पितामह, इन सब का देखकर अर्जुन का मन में बहुत ही कष्ट हुआ कि इनको कैसे मैं हत्या करूं, क्योंकि ये युद्ध क्षेत्र में जब लड़ाई करने के लिए आते हैं तब एक दूसरे के मारने के लिए आते हैं, हत्या करने के लिए एकदम। ये अर्जुन जब देखा कैसे हम इनको हत्या करेंगे, तो जैसे अर्जुन कह रहे हैं दृष्टे मम स्वजनं कृष्ण जुजुत्सुं समुपस्थितां सीदन्ति मम गात्राणि तच्चैव मुखं च परिशुष्यति। हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्र तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख जा रहा है। बेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवं संस्रते हस्तात् तच्चैव परिदर्श्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोम के खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडी धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल गई है। तो वैसे ये कहा रहे, देखिए ते में स्थिता युद्धे प्राणं सक्त धनानि च आचार्य पितर पुत्रान तथैव च पितामह। मेरे आचार्य द्रोणाचार्य, मेरा अस्त्र शिक्षा गुरु मेरे सामने खड़े हुए हैं लड़ाई करने, आचार्य पितर पितृतुल्य बहुत सारे व्यक्ति, पिता जैसे बहुत सारे व्यक्ति, पुत्रास्तथैव च। दुर्योधन का पुत्र भी अर्जुन का पुत्र का ही समान था। और पितामह, मेरा पितामह भीष्म देव, मातुला शल अर्जुन का मामा थे, माधुरी का भाई थे शालु, मद्राज के राजा। माधुरी थी मद्राज के, दक्षिण भारत के मद्राज के राजकन्या, और उनकी भाई शाल्य पांडव के पक्ष लेने के लिए आ रहा था, परंतु दुर्योधन ने कपट रूप से उनको प्रताड़ना करके अपना साइड में ले लिया। और क्षत्रिय का मनोभाव ऐसा होता है, जिसका पक्ष ले लेता था वो उसका पक्ष में ही रह जाता था, उसके प्राण भी देने के लिए तैयार हो जाते थे। तो शाल्य ससुरा पौत्रा, मेरा ससुर, मेरा पोता स्वाला, बिंद और अनुबिंद वो यहाँ के रहने वाले थे अवंती का, अर्जुन कृष्ण का जो ये थे, कृष्ण का पत्नी थी मित्र बिंदा, वो यहाँ की राजकुमारी थी अवंती का, और उनका भाई बिंदा और अनुबिंद कौरव पक्ष में योगदान कर चुका है। संबंधिनस्त था, ऐसे बहुत सारे आदमी जो मेरा बहुत ही निकट है उनके साथ हमको लड़ाई करना पड़ेगा, तो कैसे नहीं लड़ाई करना। तब भगवान अर्जुन को क्या समझाया, ये गीता की ज्ञान अर्जुन को प्रदान कर रहे। भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को, कह रहे हैं कि तुमको लड़ाई करना पड़ेगा, ये युद्ध तुमको करना ही पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा उसको उपदेश भगवान दे रहे हैं, क्योंकि ये जो युद्ध हो रहा है ये धर्म युद्ध। धर्म युद्ध का मतलब है भगवान के पक्ष और भगवान के विपक्ष। असुरों के साथ असुरों का युद्ध जो होता है वो धर्म युद्ध नहीं, जैसे अब हो रहा है अमेरिका के साथ या और इराक के साथ अमेरिका का हो रहा है युद्ध, इराक का, वो कोई धर्म युद्ध नहीं, क्योंकि दोनों साथ पक्ष ही भगवान को नहीं मानते। धर्म युद्ध है धर्म के रक्षा करने के लिए जो लड़ाई, वो है धर्म। और ये इस युद्ध कुरुक्षेत्र का युद्ध धर्म युद्ध क्यों है, क्योंकि भगवान जब इस पृथ्वी पर आते हैं तब जो भगवान का भक्त वो भगवान के पक्ष ले लेते हैं, और जो असुर है जो विरोधी है धर्म का वो भगवान के विपक्ष में चले जाते हैं। ऐसे हर समय होता है, क्योंकि देखिए भगवान धर्म का रक्षा करने के लिए आते हैं, और उस समय धर्म का परिस्थिति, धर्म का हाल बहुत ही खराब हो जाता था, उसके कारण भगवान आते हैं। धर्म को जदा धर्म से ग्लानि भवति, धर्म का जब ग्लानि होता है तब भगवान आते हैं। तो यह धर्म का ग्लानि जब हो चुका है तो आप सोचिए पृथ्वी का हाल कैसा होगा उस समय, एकदम अधर्म से भरा हुआ था। जैसे जब श्री रामचंद्र आए थे तब पृथ्वी का हाल कैसा हुआ था, पृथ्वी के ऊपर कौन ये कर रहा था, राज कर रहा था, राम। और रावण कैसा राक्षस, कैसा असुर था, भगवान का विरोधी था, कि भगवान का जो शक्ति, भगवान का जो पत्नी लक्ष्मी देवी सीता देवी को चुराने का प्रयत्न किया, चुराने का चेष्टा किया। असल में रावण सीता देवी को स्पर्श भी नहीं कर सका। जिसको रावण चुरा के ले गया था वो सीता देवी नहीं थी, वो था माया सीता। सीता देवी के अनुरूप एक रूप, क्योंकि रावण जैसे राक्षस सीता देवी के स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो ऐसे भगवान को जो पत्नी, उनको चुराने का, जैसा बुरा काम वो किया था, और उसके कारण ऐसे हम देखते हैं जो राक्षस है वो क्या करते हैं, भगवान का विरोधी बन जाता है, और उसके कारण अंत में उसका मृत्यु होता है। भगवान का हाथ, भगवान को असुरों को परित्राणा साधना विनाशाय जो दुष्कृतम, जो दुष्कृतम है, जो बुरा आदमी उसको मैं संहार करता हूं, भगवान कह रहे हैं, विनाश करता हूं। तो यहां हम देख रहे हैं कि भगवान लड़ाई नहीं कर रहे हैं इस युद्ध में, परंतु भगवान का पक्ष में जो धार्मिक जो है वो व्यक्ति सब आ गए हैं पांडव में, और जो अधार्मिक था वो सब कौरव के पक्ष ले लिया, अर्थात भगवान के भी पक्ष में चला गया, भगवान का विरोधी बन गया, और इस लड़ाई अब शुरू होने वाला है। ये लड़ाई को, ये युद्ध को रोकने के लिए बहुत चेष्टा हुआ था, बहुत सारे आदमी चेष्टा किए थे। विदुर तो पहले थे जो चेष्टा किया था, नहीं सका। ऐसे बहुत सारे प्रवीण व्यक्ति जो कुरु वंश के बहुत ही नजदीक थे, उन्होंने ये लड़ाई को, इस युद्ध को रोकने के लिए बहुत कोशिश किया। अंत में श्री कृष्ण स्वयं जाकर प्रस्ताव दिया कि मत, ये लड़ाई मत करो, पांडव को 5 गांव दे दो और कुछ नहीं चाहिए, आधा राज्य देना नहीं पड़ेगा, केवल 5 गांव दे दो। अर्जुन, दुर्योधन वो भी देने को इनकार कर दिया। तो इस लड़ाई कैसे रोक जा सके, कोशिश तो किया है परंतु लड़ाई अब होने वाला ही है, और ये भगवान का ही आयोजन किया हुआ था, भगवान ही स्वयं इसका आयोजन किए थे। और अब इस धर्म युद्ध में भगवान क्या कर रहे, करने वाले थे, सब जो विरोधी है उनको इकट्ठा किया, भगवान का जो विरोधी है उनको इकट्ठा किया, और बस इस युद्ध के माध्यम से सारे को संहार कर दिया। भगवान के आयोजन में ही ये सब इकट्ठा हुए थे, यह युद्ध का आयोजन हुआ था। और पांडव पक्ष में भगवान, पांडव पक्ष ही है परंतु भगवान पांडवों के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं, केवल अर्जुन का रथ चला रहे हैं। भगवान प्रतिज्ञा किया था कि इस युद्ध में भगवान अस्त्र स्पर्श नहीं करेंगे। अब ये युद्ध जब शुरू होने वाला है तब अर्जुन अपना हृदय की दुर्बलता के कारण ये युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तब भगवान अर्जुन को बहुत सारे निर्देश या उपदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि क्यों तुमको ये लड़ाई करना चाहिए। भगवान पहले क्या बताया, तुम सोचते हो तुम या तुम्हारे जो संबंधियों हैं, सखा है, इन सबको तुम हत्या करोगे, परंतु तुमको पिता पता नहीं है कि आत्मा का मृत्यु नहीं होता है, और ये शरीर आत्मा का, ये शरीर है आत्मा का शरीर, ये शरीर एक कपड़ा जैसा है। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं और कपड़ा जब पुराना हो जाता है या कपड़ा जब गंदा हो जाता है तो उस कपड़ा को उतार कर हम नया, वैसे ही शरीर जब पुराना हो जाता है तो पुराना शरीर को त्याग कर हम नया शरीर ग्रहण करते हैं। इसे जन्मांतर कहा, आत्मा तथा देहांतर प्राप्ति, देह का अंतर होता है, एक देह से दूसरा देह में दूसरा देह प्राप्ति होता है। ऐसे जीव अनंत काल से ऐसे एक के बाद एक देह ग्रहण कर रहा है और त्याग कर रहा है, जन्म लेते हैं एक शरीर में और मृत्यु होता है उस शरीर का। जन्म और मृत्यु का संबंध क्या है? जन्म का मतलब है, जन्म का मतलब क्या है? एक शरीर नया शरीर धारण करना। और मृत्यु का अर्थ क्या होता है? पुराना शरीर त्याग। और ये जन्म और मृत्यु, नया शरीर ग्रहण और पुराना शरीर त्याग, ये दोनों के बीच में है क्या? जीवन। हम जिए हैं, हम जिंदा, जिंदा जो है, जिंदगी जो है वो जन्म और मृत्यु के बीच शरीर में जब आत्मा रहता है वो है उसका स्थिति, वो शरीर। तो ये शरीर त्यागने के विषय में भगवान उतना गुरुत्व नहीं दिए। ठीक है, पुराना शरीर छोड़ेंगे क्या है? अगर तुम्हारा कपड़ा पुराना हो गया और कोई आकर बोला चलो भाई उसको पुराना कपड़ा फेंक दो, मैं तुमको एक नया कपड़ा दे रहा हूं, तो उसके उसका क्या कष्ट होगा, दुख होगा या आनंद होगा? आनंद होना चाहिए। परंतु अज्ञानवश, अज्ञान के कारण, ताकि हमको पता नहीं है कि ये पुराना शरीर छोड़ने के बाद हमको नया शरीर मिलेगा, इसके कारण हम डरते हैं, शोक करते हैं। जय श्री श्री राम। और आत्मा जो है, आत्मा हमारा स्वरूप है, हमारा असल, असल में हम, हमारा आत्मा है। और ये आत्मा का, ये आत्मा अविनाशी है और आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है। ना जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा का न तो जन्म होता है न तो उसका मृत्यु होता है। नायं भूत्वा भवितावना, जो आत्मा है वो अनादिकाल से था और ये रहेगी। ये है आत्मा का गुण। और वैसे भगवान अर्जुन को ये ज्ञान प्रदान कि आत्मा कौन है और आत्मा और शरीर में अंतर क्या है। हम सब आत्मा हैं और शरीर हमारा एक बाहर का आवरण है, तो उसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए। ना सोचितुम अर्हसि, अंतवंत इमे देहा नित्य शुक्ता शरीर, ये शरीर का अंत हो जाएगा, क्योंकि ये शरीर अंतगत है, ये शरीर नाशवान है। परंतु आत्मा नित्य शुक्त शरीर न, शरीर न का मतलब शरीर का मालिक। तो शरीर का मालिक कौन है? शरीर का मालिक है आत्मा। अपना आपका शरीर का मालिक कौन है? ना क्या ये शरीर आप है, ये शरीर आप है या शरीर आपका है, ये सरल विचार है, आप सोचिए तो, ये शरीर क्या, आप क्या, ये शरीर है या ये आपका शरीर? आप कहते हैं ना, मेरा शरीर को आज दर्द हो रहा है, शरीर का दर्द हो रहा है, परंतु हम भूल जाते हैं कि कभी कभी हम भूल जाते हैं कि ये मेरा शरीर है, परंतु हम सोचने लगते हैं कि ये शरीर ही मैं, और मुश्किल तभी होता है। तो भगवान कह रहे हैं ये शरीर का जो मालिक है उसका, वो उसका कभी नाश नहीं होता है, वो कभी उसका कभी विनाश नहीं होता है, वो नित्य है, शाश्वत है, कोई अस्त्र के द्वारा उसको हत्या नहीं किया जा सकता है, आग के दाग द्वारा उसको जला नहीं जा सकता। ये जो आत्मा है, ये आत्मा ही हमारा असल स्वरूप है, और इस आत्मा के बारे में भगवान बहुत सारे ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया। प्रदान करने के बाद भगवान अब कह रहे हैं इस श्लोक में, जदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृत। जदृच्छया मतलब अपने आप, ये जो युद्ध का एक महान युद्ध का अवसर अपने आप ही आ गया है, ये सौभाग्य तुमको मिला है, और इसके कारण स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्गलोक की द्वार तुम्हारे लिए पूरा खुल गया है। और सुखी न क्षत्रिय पार्थ लभंते युद्ध मित्रेश, ऐसा युद्ध जब क्षत्रिय के लिए मिलता है तो बहुत खुशी होते हैं। क्यों क्यों? क्योंकि इस युद्ध में, इस युद्ध के अगर, इस युद्ध को अगर हम, इस युद्ध में अगर हम, मेरा जय होगा तो मैं ये भौतिक जगत को भोग करूंगा, और इस युद्ध में अगर मेरा मृत्यु होगा तब मैं स्वर्ग लोक में चले जाऊंगा। क्षत्रिय के लिए है, क्षत्रिय जब, क्षत्रिय अगर युद्ध क्षेत्र में क्षत्रिय का मृत्यु होता है तो उसके फल स्वरूप क्षत्रिय स्वर्ग लोक में चले जाते। ये क्षत्रिय के लिए ये बहुत ही सौभाग्य है। इसका मतलब ये नहीं है कि वैसे युद्ध क्षेत्र में जाकर वैसे मर जाएंगे, वैसे नहीं, क्षत्रिय लड़ाई करते हैं, जैसे बोलते हैं प्राण को पन करके वो लड़ाई करते हैं, और लड़ाई करने के बाद अगर मृत्यु हो गया तो कोई बात नहीं, स्वर्ग द्वार अपावृत, तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुला हुआ है। तुम अगर इस युद्ध में तुम्हारा अगर जय होगा तो तुम इस पृथ्वी को भोग करोगे, और इस युद्ध में अगर तुम्हारा मृत्यु होगा, केवल तुम्हारा ही नहीं, जितने सारे क्षत्रिय लड़ाई करने के लिए यहाँ आए हैं उनमें से या तो उन्होंने इस भौतिक युद्ध को जय करके इस भौतिक जगत को भोग करेंगे, नहीं तो अगर मर भी गया युद्ध क्षेत्र में तो सब लोग में चले जाएंगे। तो यहाँ ये दोनों ही सौभाग्य के कारण है। तो ऐसे अर्जुन को निर्देश दे भगवान दे रहे हैं, जदृच्छया चोपपन्नम, जदृच्छया मतलब अपने आप, ये अवसर, इस मौका वैसे ही आ गया है, और जब ऐसा मौका क्षत्रिय को मिलता है तो बहुत खुशी होता है। सुखी न क्षत्रिय पार्थ, सुखी होता है ऐसा युद्ध करने का अवसर, मतलब धर्म युद्ध में योगदान करने का अवसर जब क्षत्रिय होता है, क्योंकि उस अवसर के कारण उसके लिए स्वर्ग द्वार अपावृत, स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते। हरे कृष्ण। तो आज तो इस श्लोक का याद करने का हम कोशिश नहीं किया, परंतु हम आप सबको अनुरोध करेंगे कि आप घर जाकर ये श्लोक का ये श्लोक को कंठस्थ करने का कोशिश कीजिए। हरे कृष्ण।
महाराज की जय। श्री प्रभुपाद जय। गुरु परमानंद जय।